अध्याय 12। परीक्षा में धैर्य। जब विश्वास के साक्षी इतनी बड़ी संख्या में हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, तो हम हर प्रकार की बाधा दूर कर अपने को उलझाने वाले पाप को छोड़कर और ईसा पर अपनी दृष्टि लगाकर धैर्य के साथ उस दौड़ में आगे बढ़ते जाएं जिसमें हमारा नाम लिखा गया है। ईसा हमारे विश्वास के प्रवर्तक हैं और उसे पूर्णता तक पहुंचाते हैं। उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस का कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वो ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। कहीं ऐसा न हो कि आप लोग निरुत्साह होकर हिम्मत हार जाएं। इसलिए आप उनका स्मरण करते रहें जिन्होंने पापियों का इतना अत्याचार सहा। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? मेरे प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसके फटकार से ही मत मारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वो इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और कौन पुत्र ऐसा है जिसे पिता दंड नहीं देता? यदि आपको दूसरे पुत्रों की तरह दंड नहीं दिया जाता तो आप औरस पुत्र नहीं बल्कि जार संतान है। हमारे पार्थिव पिता हमें दंड देते थे और हम उनका सम्मान करते थे, तो हमें कहीं अधिक तत्परता से अपने आत्मिक पिता की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए जिससे हमें जीवन प्राप्त हो। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार इस अल्पकालिक जीवन के लिए हमें तैयार करने के उद्देश्य से दंड देते थे। ईश्वर हमारे कल्याण के लिए ऐसा करता है क्योंकि वो हमें अपनी पवित्रता का भागी बनाना चाहता है। जब दंड मिल रहा है तो वो सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा प्रशिक्षित होते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना लें, सीधे पथ पर आगे बढ़ती जाए जिससे लंगड़ा भटके नहीं बल्कि चंगा हो जाए। मसीह जीवन की परिपूर्णता। सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएगा। आप सावधान रहें, कोई ईश्वर की कृपा से वंचित न हो। ऐसा कोई कड़वा और हानिकर पौधा पनपने न पाए जो समस्त समुदाय को दूषित कर दे। आप लोगों में न तो कोई विचारी हो और न ऐसा हो कि सरस कोई नास्तिक जिसने एक ही भोजन के लिए अपना पहलौठे का अधिकार बेच दिया। आप लोग जानते हैं कि वो बाद में अपने पिता की आशीष प्राप्त करना चाहता था, किंतु ऐसा नहीं कर सका। यद्यपि उसने रोते हुए इसके लिए आग्रह किया, तो भी वह अपने पिता का मन बदलने में असमर्थ रहा। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुंचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहां न तो सिनई पर्वत की धधकती अग्नि है और न काले बादल, न घोर अंधकार, बवंडर, तुरही का निनाद और न बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इजरायली यह विनय करते थे कि वह फिर हमसे कुछ न कहे, क्योंकि वे इस आदेश से घबरा गए। यदि जानवर भी इस पर्वत का स्पर्श करेगा तो वह पत्थरों से मारा जाएगा। वो दृश्य इतना भयानक था कि मूसा बोल उठे, मैं भय से कांप रहा हूं। आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंचे, जहां लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। आप लोग सावधान रहें, आप बोलने वाले की बात सुनना अस्वीकार नहीं करें। जिन लोगों ने पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले की वाणी को अनसुना कर दिया था, यदि वे नहीं बच सके तो हम कैसे बच सकेंगे? यदि हम स्वर्ग से चेतावनी देने वाले की वाणी अनसुनी कर देंगे, उस समय उसकी वाणी ने पृथ्वी को हिला दिया था, किंतु अब वो यह घोषित करता है, मैं एक बार और न केवल पृथ्वी को बल्कि स्वर्ग को भी हिलाऊंगा। एक बार और, इन शब्दों से संकेत मिलता है कि सृष्टि की जो चीजें हिलाई जाएंगी वे नष्ट हो जाएंगी, और जो नहीं हिलाई जाएंगी वे बनी रहेंगी। हमें जो राज्य मिला है वो नहीं हिलाया जा सकता, इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते रहे और उसकी इच्छा अनुसार भक्ति एवं श्रद्धा के साथ उसकी सेवा करते रहे, क्योंकि हमारा ईश्वर भस्म कर देने वाली अग्नि है।